ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। दिल्ली के उपराज्यपाल ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से इलेक्ट्रिक वाहन रैली को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने विशेष अभियान 4.0 के तहत चौथे संस्करण की सराहना की, कहा सामूहिक प्रयासों से ठोस परिणाम हासिल हुए। भारत के 7 संस्थानों ने वैश्विक स्तर के शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान हासिल किया, दिल्ली ने 44वां स्थान हासिल किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने खेल के माध्यम से देश को गौरवान्वित कर रहे पुलिसकर्मियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि देशवासियों की रुचि खेलों में बढ़ रही है और सरकार एथलीटों के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भी प्रतिबद्ध है।
हमारे देश में खेलों के प्रति जो सोच पहले थी उसमें अब न केवल परिवर्तन आया है बल्कि खेलों के प्रति लोगों का रुझान भी बदला है। बीते एक दशक में देश के अंदर इसके लिए पहले से कहीं बेहतर विश्व स्तरीय ढांचा तैयार भी किया गया है। इसके बावजूद इस वक्त विश्व स्तर के खिलाड़ी हमारे यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। खेल न केवल आपसी मेलजोल के लिए जरूरी है बल्कि यह आपसी सौहार्द को भी बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 39 टीमों के 1100 से अधिक पुलिस खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
पुलिस चैंपियनशिप का आयोजन भारत पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में 25 राज्यों, 4 केंद्र शासित प्रदेशों और 10 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लगभग 1100 खिलाड़ी भाला फेंक, शॉटपुट, रिले दौड़ और स्टीपल चेज जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। इस चैंपियनशिप का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों के बीच शारीरिक फिटनेस और एथलेटिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना है। एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जा रही हैं और साइकिलिंग प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान सेक्टर 29 रोहिणी में आयोजित की जा रही हैं। ध्वजवाहक के रूप में अपने कप्तानों के साथ सभी टीमों ने इस अवसर पर उपस्थित दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का सम्मान किया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए विभिन्न राज्यों के कई एथलीटों ने बेहतर प्रदर्शन के लिए अपनी तैयारियों के बारे में बात की।
मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और मैं यहाँ पुलिस टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, और मेरा इवेंट डिस्कसर है और लास्ट ईयर मेरा यहाँ पे गोल्ड मेडल था और मैं इस बार फिर बहुत अच्छी मेहनत करके आया हूँ क्योंकि मैं अपना गोल्ड डिफेंड कर पाऊँ।
माय नेम इज अभिषेक दलवेरा, आई एम फ्रॉम ओडिशा पुलिस और मैं इधर अपना 100 मीटर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और रिले आल्सो। मेरा इधर पहली बार मैं इस साल ज्वाइनिंग हुआ हूँ और अच्छा से हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैं इधर आके और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊँ, ये मेरा टारगेट है।
इस महीने की 14 तारीख को समाप्त होने वाली इस चैंपियनशिप के प्रतिभागियों में उत्साह और उमंग का माहौल है। सुमित की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, प्रादेशिक समाचार।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से इलेक्ट्रिक वाहन रैली को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन सेवा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री लाल ने अपने संबोधन में कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन सेवा एक अच्छी पहल है जिसकी दिल्ली में आवश्यकता थी। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्य और परिवहन मुख्य तौर पर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं।
पोल्यूशन जो है वो सामान्यतया इंडस्ट्री से पैदा होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क से पैदा होता है, ट्रांसपोर्ट से भी होता है, तो हर एक सेक्टर को प्रदूषण कम करने के लिए अपने प्रयास करने चाहिए। उसके अंदर ईवी का यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अपना एक योगदान है। जो डीजल से पेट्रोल से चलने वाले वाहन है वो ईवी में अगर परिवर्तित होते हैं तो इसका बहुत बड़ा लाभ होता है।
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार शाम 5 बजे राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 334 दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों के बावजूद शहर में प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा।
प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों द्वारा जल छिड़काव, मशीनों से सड़कों की सफाई, धुंध को हटाने जैसे कई उपायों के बावजूद शहर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अस्पताल के श्वसन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अमित सूरी ने प्रदूषण संबंधी बीमारियों से बचने के लिए नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।
अनावश्यक बाहर नहीं निकले, N95 मास्क का प्रयोग जरूर करिए, घर के खिड़की दरवाजे बिल्कुल नहीं खोलें, एयर प्यूरिफायर का यूज करिए, सार्वजनिक परिवहन का यूज करिए, जिन लोगों को सांस की बीमारियां उनको टाइमली अपना वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है।
इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान दिल्ली और NCR क्षेत्र में रात और सुबह के समय धुंध की भी भविष्यवाणी की है। रईसुद्दीन रिहान के साथ भानु प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दिल्ली के आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक 353, वजीरपुर में 369, बवाना में 391 और जहांगीरपुरी में 378 दर्ज किया गया है। भारत के 7 विश्वविद्यालयों ने वैश्विक स्तर के शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान हासिल किया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 ने दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है। इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली ने 44वां स्थान हासिल किया है, जबकि IIT बॉम्बे 48वें स्थान पर है। IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष 100 में जगह बनाने में सफल रहे हैं। IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, UPES और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे संस्थान शीर्ष 150 में शामिल किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यस्थलों, स्थान प्रबंधन, सर्वश्रेष्ठ कार्य व्यवहार को बढ़ावा देने और लंबित मामलों के अधिकतम निपटान पर ध्यान केंद्रित करने पर संबंधी विशेष अभियान 4.0 की सराहना की है। इस विशेष अभियान के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021 के बाद से कचरा बेचने से राजकोष को 2,364 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की एक सोशल मीडिया पोस्ट का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियान की सफलता दर्शाती है कि सामूहिक प्रयासों से ठोस परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं और स्वच्छता तथा आर्थिक विवेक को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कुशल प्रबंधन और सक्रिय प्रयासों के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज 2 नए मार्गों 892 शटल STL और 892 स्पेशल पर नई बस सेवाओं का शुभारंभ किया। इन बसों का संचालन दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रांजिट सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नए बस मार्ग 892 स्पेशल को खासकर स्कूली बच्चों के लिए शुरू किया गया है, जो धूलसिरस गांव से छावला स्कूल तक 6.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के 5 बार के विधायक मतीन अहमद ने आज आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अरविंद केजरीवाल ने मतीन अहमद का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि वो यमुनापार क्षेत्र की जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा करते आए हैं। उन्होंने कहा कि मतीन अहमद दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है और जनता के सुख दुख में काम आते हैं। वहीं मतीन अहमद के आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने उन पर अवसरवादी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अवसरवादी लोग किसी भी समय बदल सकते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सरदार हरशरण सिंह बल्ली ने आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर श्री सचदेवा ने कहा कि श्री बल्ली ने भाजपा में आने से दिल्ली भाजपा को सिख समाज का एक मजबूत नेता मिला है। उन्होंने कहा कि श्री बल्ली के आने से पार्टी को शहर के कई विधानसभा क्षेत्रों में बड़ा लाभ मिलेगा। राजधानी के रोहिणी सेक्टर 7 स्थित पानी की पाइपलाइन में फ्लो मीटर लगाए जाने के कारण कल 10 बजे से अगले 16 घंटे तक क्षेत्र के कई इलाकों में पेयजल की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार जिन क्षेत्रों में पानी नहीं आएगा उनमें रोहिणी सेक्टर 6, 7, 8 और आसपास का क्षेत्र शामिल है। जल बोर्ड ने नागरिकों को असुविधा से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी भरकर रखने की सलाह दी है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की मानव तस्करी विरोधी शाखा ने पंजाब और उत्तर प्रदेश से लड़कियों की रहने वाली 2 नाबालिग लड़कियों को मानव तस्करों के चंगुल से बचा लिया है। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान क्राइम ब्रांच की टीमों द्वारा दिल्ली NCR क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसके बाद यूपी के बदायूं और पंजाब के लुधियाना से इन नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित बचा लिया गया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC त्योहारों के बाद दिल्ली लौट रहे यात्रियों की सुविधा के लिए 11 नवंबर तक सुबह के समय अतिरिक्त मेट्रो रेलों का परिचालन कर रहा है। DMRC ने बताया कि आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर सुबह पहली मेट्रो 6 बजे के बजाय 5:30 से उपलब्ध है। वहीं नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो रेल सेवाओं का परिचालन सुबह 5:30 बजकर 45 मिनट की बजाय 5:15 से किया जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने रेज ऑफ विजडम सोसाइटी और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से 8वां प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी आयोजित की। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में दर्शन, धर्म और कल के विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव अमिता साराभाई ने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि नवाचार और शोध सहित अर्थों में अर्थव्यवस्था के चालक हैं और भविष्य के लिए निवेश हैं। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के रजत जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में यह बात कही। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि व्यापार, कारोबार, वाणिज्य और उद्योग में लगे लोगों को व्यवस्था के दबाव में नहीं आना चाहिए। वे समृद्धि के सृजक, रोजगार प्रदाता, अर्थव्यवस्था के चालक और सामाजिक सद्भावना के योगदानकर्ता हैं तथा वे समाज में सम्मान के योग्य हैं। देश में बड़े पैमाने पर खरीफ फसलों की खरीद सुचारू रूप से जारी है। सरकार ने वर्तमान विपणन सत्र में शुक्रवार तक 120 लाख मीट्रिक टन अधिक धान की खरीद की है। धान खरीद से पंजाब में 6,58,000 किसानों को लाभ मिला है। उन्होंने 27,995 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का भुगतान किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कल से नई दिल्ली में विशेष मंत्रालय के सहयोग से 6 दिन का भारतीय तकनीकी और आर्थिक कार्यक्रम, इसे दोबारा सुन लीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल से नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सहयोग से 6 दिन का भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। यह आयोजन 16 नवम्बर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड समेत 8 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य व्यक्ति भाग लेंगे। आयोग ने कहा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकारों को प्रोत्साहन, संरक्षण और मजबूती देना है। कार्यक्रम में मानवाधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन से संबंधित विचारों, अनुभवों और अभ्यासों को साझा करने का भी अवसर मिलेगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी ने मनोरंजन की दुनिया को जीवंत तथा और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए इफिएस्टा आयोजित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य फिल्मों के प्रभाव, व्यंजन, कला और संवादात्मक अनुभवों के माध्यम से लोगों को जोड़ना है। इफिएस्टा का आयोजन 21 से 28 नवंबर के दौरान गोवा में पणजी के तट पर स्थित कला अकादमी में किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक विस्तृत श्रृंखला आयोजित की जाएगी जो दर्शकों को भारतीय संस्कृति, व्यंजन, संगीत और सिनेमा की जीवंत विविधताओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगी। राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के उपराज्यपाल ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इलेक्ट्रिक वाहन रैली को हरी झंडी दिखाई।